भागवतम का श्रवण किया है। तो भागवतम के श्रवण करने का महात्म्य है कि निरंतर मुझे भगवान के विरह वेदना नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ही साथ है, इसलिए मुझे विरह वेदना नहीं होती थी, मैं प्रसन्न हूं। तब उन रानियों ने बदनाभिषेक होकर कहा कि तब हम लोग उधर अगर किसके द्वारा कथा सुनी, उन्हें बता दिया कि उधर जी ने हमको भागवतम की कथा सुनाई है। तो इन रानियों ने प्राप्त अब बदनाम से कहा कि अब तो हम लोगों को भागवतम की कथा सुननी चाहिए उद्धव जी से। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी तो उस समय पत्रिका अपने प्रकट रूप से पत्रिका आश्रम में चले गए थे, उद्धव जी का कैसे अन्वेषण किया जाए? तो शांडिल देव ऋषि है, महात्मा है, उन्होंने बताया कि उद्धव जी रूप से प्रत्यक्ष रूप से बाह्य रूप से तो वहाँ पत्रिका आश्रम है, लेकिन यहाँ भी नित्य निवास करते हैं, उन्हीं से आप लोग कथा सुनो। तो प्रकट नहीं है, कैसे कथा सुन सके? तो उन्होंने कहा कि कीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन किया जाएगा तो उद्धव जी प्रकट हो जाएगा। तो वहीं पर कुसुम सरोवर के तट पर एक स्थान है, अभी उद्धव बैठक, वहां सभी पटरानिया और भी ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, सब लोग खूब जोर से कीर्तन किए। जब कीर्तन वो लोग कर ही रहे थे तब तक वहीं पर उद्धव जी प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उद्धव जी ने भागवतम की कथा भगवान की पत्नियों के लिए सुनाया। तो सप्ताह नहीं सुनाया था, एक महीने तक कथा चली थी। जब उद्धव जी कथा प्रस्तुत कर रहे थे, भगवान की कथा कह रहे थे, तो जब ही कथा प्रारंभ हुई तो सभी रानियों को, सभी पत्नियों को भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगा कि भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान के साथ वो लीला करते हैं, तो भगवान के साथ वो जाने लगी। प्रारंभ हुआ था कथा तो सभी पटरानियां थी और लोग भी थे, परंतु कथा के समाप्ति पर कोई नहीं रहा, एक एक करके भगवान के साथ वहां पर चले गए, भगवान के धाम में चले गए। तो भागवतम के श्रवण का महात्म्य है कि उद्धव जी ने कथा के समाप्ति के बाद केवल एक व्यक्ति स्वरूप बताने वाले बचे थे, सुनने वाले सभी भगवान के धाम में, ऐसे आकाश भगवान आते थे, भगवान के साथ एक भगवान की पत्नी ऊपर चल जाए, दूसरे के साथ ऊपर चले गए। वह स्थान भी है, उस स्थान का नाम है उद्धव बैठक, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुनाए थे। आप लोग जब दर्शन करने जाएंगे, आज तो हम लोग को समय नहीं मिला, रात्रि का समय था, अंधकार था, दिन में आप लोग गए थे आने के बाद? कोई ठीक है, कल हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, राधापुर में ही रह रहे हैं, तो आप लोग समय लेकर स्नान कर लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा। तो वहां पर आप जाएंगे उद्धव कुंड में, तो उद्धव कुंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर इस कोने में, ऐसा उद्धव कुंड है तो दक्षिण और पश्चिम के जो कोना है, तो वहां पर उद्धव बैठक है, उसी क्षेत्र में उद्धव जी घास के रूप में निवास करते हैं, और वहां एक मंदिर भी है उद्धव जी को जो डेडिकेटेड है, उद्धव जी के ऑनर में, उद्धव जी के सम्मान में एक मंदिर का भी निर्माण हुआ है, उसका दर्शन भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाजू में ही उद्धव कुंड है जिसके आपने दर्शन किया। राधा कुंड के हम तो सोचते थे कि एक बार बढ़िया से बैठकर राधा कुंड की उत्पत्ति की एक बहुत बढ़िया कथा है, कैसे राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। कल की तिथि है, कल के दिन राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था रात्रि के समय। वो तो एक स्वतंत्र कथा ही है ना। हाँ, परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा के कुछ स्थानों को मैं बता देता हूँ। जब कल हम लोग कल परिक्रमा करने जाएंगे राधा कुंड पर, तो हम लोग हमारे बाईं साइड में कोने पर ही एकदम नीचे, दाहिने साइड में नीचे एक कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मंदिर में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कुछ है, शिवलिंग रखा हुआ है कुंडेश्वर महादेव, उसका आप लोग दर्शन ऊपर से दर्शन कर सकते हैं। और हमारे बाईं साइड में एक राधा कृष्ण मंदिर है, राधा कुंड का सबसे प्राचीन वही राधा कुंड मंदिर है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड का रेनोवेशन करा रहे थे, जीर्णोद्धार करा रहे थे, तो कुंड से वो श्री विग्रह मिला हुआ था, राधा कृष्ण श्री विग्रह कुंड से वो श्री विग्रह मिला, और उसी श्री विग्रह को स्थापित कर दिया गया है उस मंदिर में। मंदिर का नाम है राधा कृष्ण मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मतलब कम, मूर्ति तो कब से है पता नहीं, कम से कम 500 वर्ष पूर्व का वो मंदिर वहां पर स्थापित है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। और फिर यहाँ आप लोग जाएंगे, आपके दाहिने साइड में कुंड के तट पर एक घाट है, विशिष्ट घाट है, उसके विषय में कथा है। रूप गोस्वामी जी एक पुस्तक लिखे थे और श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार का, श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन किए थे। तो वर्णन करते समय रूप गोस्वामी जी अपनी पुस्तक में श्रीमती राधा रानी का जो बाल होता है, केश होता है, उसको इतना कैसे सुंदर बता, इतना सुंदर था, ऐसा सुंदर था कि ऐसा लगता था कोई सांप राधा रानी के सिर को पकड़कर लटका हुआ है। तो राधा रानी के बेणी की बाल की तुलना रूप गोस्वामी सांप से किए थे। तो पुस्तक सनातन गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी पढ़े तो सनातन गोस्वामी अच्छा नहीं माने, राधा रानी के इतने मधुर बालों की तुलना, बेणी की तुलना सर्प से भयावह, सब सर्प से करना है उचित नहीं है, सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, अप्रिशिएट नहीं किए। एक दिन सनातन गोस्वामी राधा कुंड पर आए हुए थे, तो जहां वो साग सब्जी मिलता है इस घाट, और सनातन गोस्वामी बैठे से दूसरे जहां संगम है, संगम से पर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, उस घाट पर बैठे हुए थे, ऐसे भजन कर रहे थे, घूम रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी ने देखा कि दूसरे घाट पर कुछ है ब्रज की बालिकाएं आकर क्रीड़ा कर रही हैं, और उन्होंने झूला बना दिया, उस पर झूला झूल रही हैं। तो अनेक बालिकाएं थी, कम उम्र की बालिकाएं थी, एक दूसरे को झूला रही थी, उसमें एक विशिष्ट नायिका थी, उन्हीं बालिकाओं में से उसको उन्हें झूले पर बैठाया और उसको हिला रही थी। उनको दूर से देखकर सनातन गोस्वामी को उनके प्रति आत्मीयता हो रही थी कि ब्रज की बालिकाएं हैं, भगवान के धाम की बालिकाएं हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। तब तक सनातन गोस्वामी ने यह देखा कि जो लड़की को झुलाया जा रहा है, दूसरी लड़कियां झुला रही हैं, तो उसके बाल इधर हो रहे थे, तो सनातन गोस्वामी तो चीख पड़े, उनको ऐसा लगा कि कोई सांप आकर, सतु नागिन आकर, नाक आकर पकड़ कर लटका हुआ है लड़की। सनातन गोस्वामी चीत्कार करने लगे, अरे तो जल्दी दूर हटो, दूर हटो, सांप तुमको पकड़ा है, सांप पकड़ा हुआ है। सनातन गोस्वामी दौड़ हेल्प करने के लिए आए, उनको ऐसा लगा कि सतुच नाग चाहे नागिन उसको पकड़ कर लटक रही है, दया आ गई, लड़की को पकड़ लिए, काट तो दी ही होगी, फिर आए चित्कार करने, जल्दी से जल्दी नजदीक आए। तो नजदीक आए तो लड़कियों ने सावधान होकर उनको कि आप क्यों चित्कार कर रहे हैं, ऐसा करते करते उन्हें कि तुमको सांप पकड़ा है, सांप पकड़ा है। तब तक सभी लड़कियां हंसने लगी, मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गए। सनातन गोस्वामी के आजू बाजू में सभी लड़कियां वहां से गायब हो गए। सनातन गोस्वामी इतना गुड एनफ था समझ जाने के लिए कि कोई साधारण बालिका, जब साधारण गोपियां होती तो कहां गई कहां, एकदम हंसते हंसते, चेहरा भी उतना सुंदर रूप था, जो हंसते हंसते वहीं पर अदृश्य हो गए। तब सनातन गोस्वामी पुनः उनको याद आ गई रूप गोस्वामी की, रूप गोस्वामी जी को बुला रहे थे, सुनो सुनो सुनो, आपने जो पुस्तक में लिखा है ना वो ठीक है, वैसा ही रहने दो। तो पुस्तक का क्या नाम है, पद्यावली में तो पदों का संग्रह है ना, बेणी बेणी उसमें शब्द आता है पुस्तक में, बेणी श्रृंगार, यानी आप पुस्तक हमें याद नहीं आ रहा है, विशेष पुस्तक है उसमें। यह घटना वहां पर, तो वहां आप लोग दर्शन करने जाएंगे, परिक्रमा मार्ग पर रहेंगे, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मोड़ लेंगे, ऐसे परिक्रमा हम लोग जाएंगे, इधर से जाएंगे तो वहां का प्रारंभ तो यहाँ करेंगे, राधा कुंड की परिक्रमा हम लोग प्रारंभ करेंगे, इधर से जाएंगे ना, तो एक परिक्रमा मार्ग ही है, जहाँ दुकान खत्म होता है तो लेफ्ट से मुड़ते हैं, अब उस स्थान का वही स्थान मानिए जहाँ कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे, ऐसे घूमते राधा कुंड को दाहिने करके जाएंगे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके पर रघुनाथ दास गोस्वामी के पूर्व गोपीनाथ जी का, राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, और राधा रूप गोपीनाथ जी का मंदिर का हम लोग दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे गोपीनाथ जी के मंदिर के ठीक बाजू में जानवा घाट है। जानवा जी जो नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी है, वे यहाँ पर राधा कुंड में जब आई थी तो उसी घाट पर उन्होंने स्नान किया था, इसलिए उन्हीं के नाम के सम्मान में, जानवा देवी के सम्मान में उस घाट का नाम अद्यावधि जानवा घाट के नाम से जाना जाता है। वहां पर हम लोग दर्शन करने पर जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है। रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में लग 40 वर्षों से भी ज्यादा निवास किए थे लगातार। जब जगन्नाथपुरी से रघुनाथ दास गोस्वामी आए, चैतन्य महापुरुष के आदेश से यहाँ पर आए, तो इसके बाद आने के बाद 40 वर्ष से भी ज्यादा यहीं पर, ज्यादा उन्होंने यहीं पर उसी घाट पर, उसी गंगा राधा कुंड के तट पर भजन किए, और अंततः उन्होंने अपने शरीर का परित्याग, उनका तिरोभाव हुआ और उनकी स्मृति में वो समाधि है। उस समाधि ठीक है, तो वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी के स्मृति में समाधि बनाई गई, और उस समाधि पर अभी बहुत वर्षों से, अनेक अनेक वर्षों से, हम लोग का एग्जैक्ट पता नहीं कितने वर्षों से, निरंतर अखंड हरिनाम कीर्तन होता है। यहाँ के साधु महात्मा लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, और एक एक दो दो बैठ कर बड़ी बहुत बढ़िया से निरंतर और कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा कीर्तन चल रहा है, अखंड कीर्तन वहाँ पर होता रहता है। तो और इसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे परिक्रमा मार्ग पर, लेकिन उसके पूर्व आप लोगों को सूचना मिल जानी चाहिए, प्रसादम की जो भयन है, जिसको प्रसाद आना है, वह पहुंच चुका है। अच्छा होगा पहले आप लोग प्रसाद का सम्मान कीजिए, प्रसाद को अवलोकन।